ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बाबा ने आज की मुरली के अंदर परिवर्तन करने की ही प्रेरणा दी है। बाबा ने एक एक विकारों को लिया कि क्रोध किस तरह से नुकसान करता है, लोभ किस तरह से नुकसान करता है और मोह किस तरह से नुकसान करता है। बाबा ने कहा कोई भी विकार छोटा नहीं होता है और इसीलिए जीवन के अंदर परिवर्तन करना है तो दृढ़ संकल्प के आधार से ही कर सकते हैं, क्योंकि जहां दृढ़ता है वहां सफलता है। और बाबा के भी आशीर्वाद का हाथ उन बच्चों पर रहता है जो अपने अंदर ये दृढ़ संकल्प कर लेता है कि हाँ मुझे परिवर्तन करना है। क्योंकि बाबा कहे बाबा से प्यार है, उसका प्रमाण क्या है? बाबा से हम बच्चों का प्यार है उसका प्रमाण है परिवर्तन। बाबा इतना स्नेह हम बच्चों को दे रहा है, यह स्नेह का रिटर्न कैसे करेंगे? तो बाबा ने कहा स्वयं को टर्न करके, अर्थात परिवर्तन करके ही बाबा के स्नेह का रिटर्न दे सकते हैं। और ये परिवर्तन करने के लिए दृढ़ता बहुत आवश्यक है, क्योंकि जैसे दुनिया के अंदर भी लोग अपने अंदर दृढ़ता लाने के लिए, विल पावर को बढ़ाने के लिए कोई ना कोई नियम ले लेते हैं। और नियम क्या लेते हैं? चाहे स्थूल भोजन का नियम ले लेते हैं कि भाई उपवास करेंगे। उपवास करने से क्या होता है? हमारी मन की शक्ति की वृद्धि होती है। जो व्यक्ति सारा दिन उस भूख को कंट्रोल कर सका तो सोचते हैं कि हाँ मैं दिन के अंत में वो समझेगा हाँ मैं कामयाब हो गया, मेरे में दृढ़ता है। तो छोटी छोटी बातों को लेकर के वो अपनी दृढ़ता की शक्ति को बढ़ाने का पुरुषार्थ करते हैं, क्योंकि उनके पास शक्ति का स्रोत नहीं है। इसीलिए वो अपने आप में शक्ति व ऊर्जा को विकसित करने के लिए ये छोटे छोटे नियम लेते हैं। और जहां ये नियम और संयम आ जाता है, आज कोई अगर सोचे कि मुझे रास्ते पर चलते हुए इधर उधर कहीं देखना नहीं है, कोई भी होर्डिंग को नहीं देखना है, उससे क्या होगा? और कुछ नहीं, लेकिन उसका मनोबल अगर सचमुच वो कर सका तो उसके अंदर हिम्मत साहस आ जाता है, मैं कर सकता हूं। तो जो कमजोरी है उस कमजोरी के ऊपर विजय प्राप्त कर लेता है या कमजोरी का मनोबल तोड़ता है। नहीं तो कमजोरी हमारे अंदर और वृद्धि को पाती है। आज कोई अगर सोचे, बाबा ने जैसे बीच में मैसेज दिया था कि आजकल हर बच्चे के हाथ में खिलौना आ गया है, खिलौना आ गया ना, सारा दिन लगे रहते हैं उसके ऊपर। अब ये कमजोरी दिन प्रतिदिन विकसित होती जा रही है, लेकिन जब बाबा ने ये बात कही, दादी ने ये बात संदेश में कही, खास दिल्ली वाले बैठे हैं, दिल्ली वालों की दादी थी, और दादी ने जब ऊपर से देखा, गुलजार दादी ने, कि हर एक के हाथ में खिलौना है और उसी खिलौने पर लगे रहते, तो उस समय यहाँ क्लास कराया गया। आशा दीदी ने विशेष ये बात कही कि क्या हफ्ते में एक दिन इस खिलौने का उपवास कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं, जो सोचते हैं हम कर सकते हैं, हफ्ते में एक दिन मोबाइल बिल्कुल स्विच ऑफ करेंगे, जैसे मौन रखते हैं ना, ऐसे मोबाइल का मौन कर देंगे, कर सकते हैं? देखो जो हाथ उठा रहा है बाबा देख रहा है, हम दादी भी देख रही है ऊपर से, उससे होगा क्या? अपनी कमजोरी कमजोर होगी और हमारा मनोबल बढ़ेगा, आत्मबल बढ़ेगा, संकल्पों में दृढ़ता आएगी, और उस संकल्पों की दृढ़ता से ही हम स्वयं को परिवर्तन करके एक दिशा दे सकते हैं। एक बहुत सुंदर बात याद आती है, हमारे परम आदरणीय जगदीश भाई जी कहते थे कि आवारा गर्दी और मुसाफिर में अंतर क्या है, आवारा गर्दी और मुसाफिर में अंतर क्या है? मुसाफिर के पास एक लक्ष्य होता है कि मुझे वहां पहुंचना है, लेकिन आवारा गर्दी क्या करता है? लक्ष्य विहीन होता है तो इधर उधर कहां भी घूमता रहेगा और उसकी एनर्जी को वेस्ट करता है। ठीक इसी तरह दृढ़ संकल्पधारी के पास एक लक्ष्य होता है और उस लक्ष्य के कारण वो अपनी आत्मिक शक्ति को एक दिशा देते हैं, जिसके कारण वो सफल होते हैं। और जिसके पास ये दृढ़ संकल्प की शक्ति है, वो जीवन के कोई भी कार्य में असफल नहीं हो सकते। सफलता पानी है तो उसका आधार है दृढ़ संकल्प। कैसे ये सफलता दिलाता है? तो जैसे कोई मकान बनाना हो तो उसका फाउंडेशन मजबूत होना चाहिए, ये दृढ़ता हमारे जीवन के फाउंडेशन को मजबूत करता है। और जितना ये बुनियाद हमारी पावरफुल होगी, उतना ही जो स्ट्रक्चर बनेगा वो भी इतना शक्तिशाली होगा कि कितने भी विघ्न आए, कोई भी चीज आए, हलचल हो, तो भी वो हिल नहीं सकता है। ठीक इसी तरह जीवन के अंदर भी जब हम कोई भी बात का दृढ़ संकल्प करते हैं, अर्थात ये बुनियाद को मजबूत करते हैं, तो कई प्रकार की हलचल आएगी हमें हिलाने के लिए। हलचल कहाँ से आएगी? कहाँ से आएगी हलचल? संग से। पहला संग से आएगी। हमारे ही अपने संगी साथी हमें कहेंगे, अरे क्या कर रहे हो तुम, छोड़ दो, ये कोई लाइफ होती है ना? और इस तरह से हमारा मनोबल कमजोर करते हैं। तो इसीलिए सबसे पहली बात जो बाबा ने आज भी बोली, मैं कहा कि संग से अपनी संभाल करो, संग से अपनी संभाल करो। क्योंकि ये संग आपकी बुनियाद को कमजोर करने का प्रयत्न करेंगे। ये पहला अटेंशन। दृढ़ संकल्प हम लेते हैं लेकिन तुरंत ही संग उसको हलचल में लाने का प्रयत्न करेगा। इसीलिए बाबा कहे ऐसे संग से भी अपने आप को सावधान करो, तब आपका दृढ़ संकल्प मजबूत रहेगा और तब सफलता को जीवन के अंदर हासिल कर सकेंगे, अर्थात जीवन के अंदर उन्नति होगी। एक होता है दृढ़ संकल्प, दूसरा होता है जिद। दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। जब व्यक्ति दृढ़ संकल्प करता है तो उन्नति होती है और उन्नति के लिए वो युक्ति युक्त होकर चलता है। लेकिन जहाँ जिद आ जाती है वहाँ विघ्न खड़े होते हैं, खुद भी दुखी होते हैं, अपने आसपास वालों को भी दुखी करता है। तो जिद और दृढ़ संकल्प में बहुत बड़ा अंतर है। बाबा हम बच्चों को दृढ़ संकल्पधारी बनाते हैं। जिस तरह शास्त्रों के अंदर वर्णन है कि ध्रुव ने दृढ़ संकल्प किया और जब ध्रुव ने दृढ़ संकल्प किया तो लग गया, वो जिद नहीं थी, दृढ़ संकल्प था तो उसने सफलता पाई, हासिल किया जो हासिल करना था। वो सफलता न दिलाए ऐसा हो नहीं सकता है। इसलिए बाबा हम बच्चों को कहते हैं बच्चे तुम्हें भी दृढ़ संकल्पधारी बनना है। दूसरा मिसाल बताते हैं शास्त्रों के अंदर अंगद का। पैर जमा लिया और ऐलान कर दिया कि कोई भी इसको हिलाए तो वो जो कहेगा हम करने के लिए तैयार है। माँ सीता को भी छोड़ देंगे, वहां तक का ऐलान उसने कर दिया और उसके पैर को हिलाने के लिए कई लोग आए लेकिन हिला नहीं सके। अच्छे अच्छे बड़े बड़े रावण के दरबार के महारथी उठे और आए फिर भी हिला नहीं सके। और लास्ट में जब रावण उठ के आया तो क्या किया उसने, लात मार दी और कहा पैर पकड़ना है तो श्री राम के पकड़ो मेरा नहीं, है ना। युक्ति युक्त दृढ़ संकल्प उसको कहा जाता है जो हमारी उन्नति कराता है, हमें सफलता दिलाता है और युक्ति युक्त होकर चलने की विधि बताता है। वो अधीनता नहीं आती है लेकिन जहाँ जिद है वहाँ अधीनता स्वीकार करनी पड़ती है कहीं न कहीं, चाहे अपने ही पुराने संस्कारों के अधीन क्यों न हो जाए। तो इसीलिए बाबा भी कहते तुम्हें भी अंगद बनना है। अंगद शब्द को अगर अलग करे अंग और द, अंग यानी ये इंद्रियां और द यानी देना, अर्थात के ये इंद्रियों को भी बाबा की श्रीमत के आधार पर अधीन करना है, उसके अधीन होना नहीं लेकिन अधीन करना है। ये है दृढ़ संकल्प। और इसी दृढ़ संकल्प के आधार से असंभव को संभव करना सहज हो जाता है। अच्छा, दृढ़ संकल्प कर लिया तो वो कमजोर क्यों होता है, उसका एक कारण संग है। दूसरा कारण, कोई भी दृढ़ संकल्प करते हैं बाबा के घर से, खास करके आप 18 जनवरी को आओ या शिवरात्रि के दिन आओ, अमृत वेले बैठकर बाबा के सामने दृढ़ संकल्प करते बाबा के कमरे में, उसके बाद वो ढीला क्यों हो जाता है। एक तो संघ के प्रभाव में आ गए, दूसरा कारण ये संकल्प ढीला क्यों होता है। जब हम दूसरों को देखना आरंभ करते हैं, कमजोर व्यक्ति को देखेंगे तो क्या होगा, अब देखा किसी कमजोर को, अरे ये तो अमृत वेला भी नहीं उठ रहा है, ये तो मेरे से पुराना है, और पुराना होने के बावजूद भी अमृत वेला नहीं उठता है, उसे तो मैं ही अच्छा अमृत वेला उठ के जाता हूँ। अब यहाँ आने के बाद भी देखता रहेगा वो आया के नहीं आया के नहीं, उसका क्या अमृत वेला हुआ, फिर हुआ। तो कमजोरों को जो देखता है फिर धीरे धीरे उसका भी संकल्प ढीला हो जाता है, अगर यही नहीं करता है तो मैं क्यों दृढ़ संकल्प लेकर चल रहा हूँ। चलता है इसका मतलब यहाँ, और इसी तरह से चलता है करके उसमें आ जाता है तो जरूर है वो दृढ़ संकल्प हमारा ढीला जरूर होना है। इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं कि स्कूल में भी कोई बच्चे अगर पास होना चाहते हैं तो वो कमजोर विद्यार्थी को नहीं देखता है, किसको देखता है, जो उससे आगे है, उन लोगों को देख करके उनसे प्रेरणा लेता है। कमजोरों को देख करके वो अपने संकल्पों में भी ढीला नहीं हो जाता है। तो जो हमारी आदत इधर उधर देखने की है ये हमें कमजोर करती है। इसीलिए बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि बच्चे जब भी आप कोई दृढ़ संकल्प करो तो पहली बात दिन भर में भी अटेंशन में बार बार लाते रहो ताकि वो पक्का हो जाए, हमारा संस्कार बन जाए। कोई भी बात संस्कारों में कैसे आती है, तो कोई भी बात संस्कार में तब आती है जब बार बार उसको स्मृति में लाते हो, और स्मृति में ला करके फिर कर्म में लाते हैं तब जाकर के वो संस्कार बनता है, है ना। ठीक इसी तरह दृढ़ संकल्प को भी अगर मुझे संस्कार बनाना है तो मुझे बार बार उसको स्मृति में लाने की आवश्यकता है। जब तक वो पक्का न हो जाए तब तक उसको स्मृति स्वरूप होकर के देखते हो। दूसरी बात के प्रतिदिन अमृत वेले उसको रिवाइज करो। एक तो दिन भर में अटेंशन में लाओ, दूसरा अमृत वेले उसको रिवाइज करो रोज, और बाबा की शक्ति और प्रकाश उस संकल्प को देना है, वो भी पॉजिटिव एफर्मेशन के साथ कि मुझे ये करना है, ये नहीं करना है, इस संकल्प को सकाश नहीं दिलाना। जैसे कई बार मिसाल के रूप में आज जैसे बाबा ने कहा किसी के अंदर क्रोध का संस्कार है और वो कई बार सोचता है दृढ़ संकल्प करता आज मुझे क्रोध नहीं करना है, आज मुझे क्रोध नहीं, कुछ भी हो जाए आज मुझे क्रोध नहीं करना है, लेकिन अनुभव क्या कहता है कि उस दिन वो सबसे अधिक क्रोध करता है। क्यों? फिर सोचता है बाबा से अमृत वेले भी बैठ करके सकाश लिया फिर भी इतना क्रोध आया, क्या बाबा मदद नहीं करता है। लेकिन अभी दुनिया के अंदर इस बात का रिसर्च हुआ है कि हमारा दिमाग जो है नहीं शब्द को नहीं पहचानता है, उसकी डिक्शनरी में नहीं शब्द नहीं है, और उसमें भी हम सतयुगी आत्माएं सतो प्रधान आत्माएं दो युग तक सतो प्रधान स्थिति में रहे, तो हमारे संस्कारों में तो नहीं शब्द है ही नहीं, है ना। अब जब नई शब्द नहीं है, उसकी डिक्शनरी में नई शब्द नहीं आता है, तो जब हम ये संकल्प करते हैं कि आज मुझे क्रोध नहीं करना है, तो वो नहीं शब्द को रिकॉग्नाइज नहीं करता है, पढ़ता नहीं है दिमाग हमारा। तो सेंटेंस क्या होगा, नहीं शब्द निकाल दो तो सेंटेंस क्या हुआ, आज मुझे क्रोध करना है, आज मुझे क्रोध करना है, आज मुझे क्रोध करना है, तो क्या होगा उस दिन सबसे ज्यादा क्रोध होगा। और इसीलिए कई बार कई लोग हिम्मत हार जाते हैं कि बार बार हम संकल्प करते हैं लेकिन बार बार फेल हो जाते हैं। तो हमें ये संकल्प नहीं करना है कि आज मुझे क्रोध नहीं करना है, लेकिन उसके बदले क्या करना है कि आज मैं आत्मा शांत स्वरूप अपने स्वधर्म में, शांति के स्वधर्म में स्थित रहूंगी। अब ये दिमाग पहचानता है। और इसीलिए जब अमृत वेले उठो तो बाबा से जो सकाश लो, शांत स्वरूप की स्थिति को सकाश, आज मैं शांत स्वरूप स्थिति में रहूंगी और बाबा की सकाश उसको मिल रही है, तो उस दिन आप देखेंगे कि आप विजयी हो जाएंगे, सफल हो जाएंगे। और अगर सफलता मिलेगी तो क्या होगा, खुशी होगी, और खुशी से अंदर में और हिम्मत आएगी, तो और बातें जो है और कमजोरियां है उसके ऊपर भी विजयी होने के लिए अंदर में मोटिवेट हो जाएंगे, इंस्पायर हो जाएंगे, प्रेरणा मिलेगी कि नहीं मुझे करना है, मैं एक पर विजयी हो गया अभी दूसरे पर भी हो सकूं, क्योंकि ये सही विधि है। जब आप ये कहते हैं कि आज मुझे क्रोध नहीं करना है, आज मुझे क्रोध नहीं करना है, नई शब्द को उसने पहचाना नहीं, और जब अमृत वेले बाबा से सकाश लेते, बाबा आज मुझे क्रोध नहीं करना है, तो सकाश किसको मिली, क्रोध को मिलाई आपने। बाबा से सकाश लेते थे, बाबा तो ये नहीं कि ये गलत संकल्प कर रहा है इसलिए आप सकाश मांग रहे हैं, बाबा से ले रहे हैं। जैसे सूर्य के आगे खड़े हो तो सूर्य तो ये तो नहीं कहेगा कि भाई आज इसको सूर्य की ऊर्जा नहीं देनी है, इसको देनी है मुझे, ये गलत संकल्प कर रहा है इसलिए इसको नहीं देनी। सूर्य तो अपने प्रकाश को चारों ओर फैला ही रहा है, तो बाबा की सकाश सारे विश्व की आत्माओं के लिए है। अब आप वो सकाश बाबा से ले रहे हैं क्योंकि बाबा तो निरंतर दे रहा है, अब आप ले रहे हैं तो किसको दे रहे हैं, क्रोध को दे रहे हैं, क्योंकि दिमाग ने तो ये पढ़ा नहीं शब्द नहीं पढ़ा, इसलिए क्रोध को सकाश मिलती जा रही है, इसीलिए उस दिन सबसे ज्यादा क्रोध आएगा। लेकिन अगर आप शांत स्वरूप स्थिति में, उस स्वधर्म में स्थित होकर के बाबा की प्रकाश लेंगे, तो आप देखेंगे कितनी भी बड़ी से बड़ी कोई गाली देने वाला भी आ जाए तो भी आप अपने शांत मुद्रा में रहेंगे, क्योंकि उस दिन आपका उस शांति का स्वरूप पावरफुल हो गया है बाबा की प्रकाश, है ना। तो इसी तरह हर कमजोरी का जो ऑपोजिट है वो लेना है ना? ये नहीं करना ये नहीं सोचो, लेकिन क्या करना है वो सोचो और बाबा की सकाश उसको दिलाओ, फिर देखो। क्योंकि अगर बार बार आप क्रोध नहीं करना है, क्रोध नहीं करना है और फेल हो गए, फिर ज्यादा गुस्सा आया और ज्यादा गुस्सा आया, तो दिन प्रतिदिन दिल शिकस्त होंगे। तो जकल की मुरली हम सभी ने संडे की सुनी, बाबा कहते हैं बच्चों में या तो दिल शिकस्तपन आ जाता है इसलिए प्रसन्न नहीं रहते हैं, और दूसरा दूसरे को देख करके ईर्ष्या आती है, ये कर सकता है मैं नहीं कर सकता हूँ, अब उसको भी नहीं करने दूंगा, ये भाव आ जाता है ना, मैं अकेला फेल क्यों हूँ, उसको भी फेल करूँ, तो ईर्ष्या आ जाती है। और जहाँ ईर्ष्या और दिल शिकस्त बनाया तो प्रसन्नता समाप्त हो जाती है, फिर दिल शिकस्त होते 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 ना उम्मीद हो जाते हैं अपने में, उम्मीद भी खत्म हो जाती है, और उसके कारण जो व्यर्थ संकल्प संकल्प और नेगेटिव संकल्प चलते हैं तो क्या होगा? फिर धीरे धीरे डिप्रेशन के शिकार बनते हैं, स्वयं में हिम्मत हार जाते हैं, शायद मेरा भाग्य ही ऐसा है, जैसे कल बाबा ने कहा ना, शायद मेरा भाग्य ही ऐसा है, मैं कर ही नहीं सकता हूँ, क्या करूँ, पता नहीं मैं बहुत पतित आत्मा होंगी, कैसे कैसे विचार अपने प्रति दिल लगाने चालू करते हैं। इसीलिए बाबा कहे, दिल शिकस्त होने के बजाय जब सही विधि यथार्थ विधि को अपनाते तो यथार्थ विधि से सिद्धि स्वरूप बनते हैं। और ये यथार्थ विधि है कि जो हमें करना है वो परिवर्तन का दृढ़ संकल्प अपने अंदर लेना है। जो करना है, मुझे शांत स्वरूप स्थिति में रहना है, शीतलता का स्वरूप मुझे रखना है, तो उस स्वरूप को प्रकाश दिलाने। मान लो कोई इम्प्योरिटी है और बार बार वो इम्प्योरिटी का संकल्प इमर्ज होता रहता है, जो दृष्टि को चलायमान करता है, अनेक इंद्रियों को चलायमान करता है, तो उस समय बाबा से उस स्वरूप को प्रकाश दिलाओ कि मैं शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ। और जब मैं शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ और बाबा की किरणें उस स्वरूप को मिल रही है, तो आप महसूस करेंगे कि आपकी पवित्रता की जो शक्ति है बढ़ने लगेगी, क्योंकि हमारे आदि अनादि संस्कार तो वही है, पवित्रता के ही है। तो उसको जब प्रकाश दिलाई तो मैं आत्मा सचमुच इतना उसमें पावरफुल हो जाऊंगी कि मुझे सफलता सहज प्राप्त होने लगेगी। और जो कमजोरी के संस्कार है वो इस पावरफुल स्वरूप से वो जलने लगते हैं, वो समाप्त हो जाते हैं। इसीलिए उस स्वरूप को इमर्ज करो। कभी प्रेम स्वरूप को इमर्ज करो कि मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ। आप समझो कि आपको बार बार किसी आत्मा को देख करके नफरत घृणा आ रही है, तो आप ये अंदर में सोचो, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। क्योंकि क्रोध करके, घृणा करके, कोई भी अशुद्ध विचार उत्पन्न करके हम अपना विकर्म क्यों बनाए? हम अपने खाते के अंदर माइनस का खाता क्यों बनाए? और बाबा का प्यार ऐसी आत्माओं को तो मिलता ही नहीं है। बाबा का प्यार, कल बाबा ने बहुत अच्छी बात कही, जो स्वयं से प्रसन्न, दूसरों से प्रसन्न, सेवा से प्रसन्न, तो उसके ऊपर भगवान स्वतः प्रसन्न होता ही है। और जिस पर भगवान प्रसन्न हो उसको सफलता न मिले ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो इसलिए अपना पॉजिटिव स्वरूप जो है उसको इमर्ज करो, अपना सकारात्मक स्वरूप अर्थात अपना आदि अनादि स्वरूप को इमर्ज करो और उसको प्रकाश दिलाओ। जितना उसको प्रकाश मिलती जाएगी आपको सफलता हर कदम में अनुभव होने लगेगी, क्योंकि पॉजिटिव पावरफुल होता है, नेगेटिव कमजोर होता है। तो पॉजिटिव जब पावरफुल होता है तो फिर परिवर्तन करने में, जैसे हर रोज जब सफलता मिलती है तो हर रोज एक एक कदम आगे बढ़ते बढ़ते क्या हो जाएगा, मंजिल पर पहुंचना सहज हो जाएगा। इसीलिए बाबा कहते, रोज अमृत वेले उसको रिवाइज करो और उस स्वरूप को बाबा की प्रकाश दिलाओ और आप सफलता का अनुभव करो। क्योंकि अगर रिवाइज नहीं किया, उसको इमर्ज नहीं किया, तो धीरे 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 वो संकल्प जो किया था वो उड़ जाएगा। और फिर साल के बाद जब 18 जनवरी आएंगी तो लगेगा, अरे मैंने पिछले बार ये संकल्प किया था लेकिन उसमें लेकिन आपने कभी उस संकल्प को रिवाइज ही नहीं किया, उसको स्मृति स्वरूप में ही नहीं लाया, तो कैसे सफलता मिलेगी? ऐसे थोड़ी कि बाबा के कमरे में मैंने संकल्प कर लिया तो बस हो गया और बाबा अभी सब देख लेगा, ऐसा नहीं। मुझे पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा, और मेरा पुरुषार्थ यही है कि मैं रोज अमृत वेले उस संकल्प को रिवाइज करके उस प्योर संकल्प को उस स्वरूप को प्रकाश दिलाऊं। तीसरा, जब परिवर्तन करना है तो परिवर्तन करने का आधार है कि जो बाबा ने कल कहा कि बाबा ने हर बच्चे को कोई न कोई विशेषता जरूर दी है। ब्राह्मण जन्म लेते ही हमें ईश्वर से गिफ्ट मिलती है, और वो कौन सी गिफ्ट मिलती है? ब्राह्मण जन्म की गिफ्ट जो बाबा देता है, कोई न कोई विशेषता। जो बाबा ने कहा 9 लाख की लास्ट आत्मा या त्रेता युग की 33 करोड़ की भी लास्ट आत्मा को भी जिसने भगवान को पहचाना उसको भगवान से कोई न कोई गिफ्ट जरूर मिलती है। और गिफ्ट कौन सी मिलती है? कोई न कोई विशेषता की गिफ्ट मिलती है। अब उस विशेषता को जितना प्रयोग करो आप सेवा में, संबंध में, व्यवहार में, जितना उस विशेषता का प्रयोग करो उतना वो वृद्धि को प्राप्त होगी। दूसरा देखा जाता है कि विशेषता हमें वही मिलती है जो शस्त्र का काम करती है और उस कमजोरी पर हमें विजयी दिलाती है। देखो भक्ति मार्ग में भी हर कोई जानता है मेरी कमजोरी कहाँ है, जानता है ना? बाबा के ज्ञान में आने के बाद तो और क्लियर हो जाती है कि मेरी कमजोरी कहाँ है, जानते हैं ना हर कोई कि नहीं जानते? जानते हैं। अगर कोई हमें पॉइंट आउट करता है आपके अंदर तो ये कमजोरी है, तो हम क्या कहेंगे? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हम उसको ढकने का प्रयास करेंगे, लेकिन अंदर में हम जानते हैं कि हमारी ये कमजोरी है ना? और इसीलिए भक्ति मार्ग में भी जब जानते थे तो भगवान से क्या मांगते थे? हे प्रभु हमें शक्ति दो ताकि मैं इस कमजोरी को जीत सकूं। ये शक्ति मांगते थे ना भक्ति मार्ग में। अब वही भक्ति के संस्कार कभी कभी ज्ञान मार्ग में भी आ जाते हैं कि जब बाबा के कमरे में जाएंगे तो क्या कहेंगे? बाबा को याद कर बाबा शक्ति दो कि ये कमजोरी के ऊपर मैं विजय प्राप्त कर सकूं। और मधुबन आई हूँ खास, तो मधुबन में तो बाबा की शक्ति मिलती ही है, ये समझ करके हम बाबा को बार बार कहते बाबा शक्ति दो कि यहाँ से जाकर जाऊं तो मैं विजयी होकर के जाऊं। होता है ना ऐसा? तो बाबा से मांगते हैं ना, मांगना नहीं चाहिए लेकिन मांगते, क्योंकि वो भक्ति के संस्कार चल रहे होते हैं अंदर। अब बाबा कोई जादू की छड़ी तो नहीं घुमा देगा, ये लो हाँ तुम अपने संस्कार के ऊपर विजयी हो गए, ऐसे तो नहीं करेंगे ना। अच्छा बाबा से मांगा तो आखिर भी बाप है, वो देगा जरूर, क्योंकि बाबा का तो बच्चों से प्यार है। तो बाबा क्या करता है? विशेषता दे देता है, विशेषता का वरदान दे देता है, ताकि उस विशेषता का प्रयोग करो तो उस कमजोरी के ऊपर स्वतः विजयी हो जाएंगे। वो विशेषता शस्त्र का काम करेगी और उस कमजोरी की जड़ों को समाप्त करेगी, काट देगी। तो इसीलिए बाबा विशेषता का वरदान देता है। अब जो विशेषता का वरदान मिला उसको यूज नहीं किया तो क्या होगा? पड़ा रहेगा, जैसे तिजोरी के अंदर पड़ा है, वो वृद्धि को नहीं पाता है। लेकिन जितना उसको यूज करो उतना वो वृद्धि को पाता है, और जब वृद्धि को पाता है तो उसको देख देख करके इतनी खुशी होती है। और वो कमजोरी को प्रयोग, या तो विशेषता का प्रयोग होगा या कमजोरी का प्रयोग होगा, दोनों में से एक ही प्रयोग होगा। अगर विशेषता का प्रयोग नहीं किया तो कमजोरी का प्रयोग होगा और वो कमजोरी वृद्धि को पाएगी। बार बार कोई गुस्सा करता रहेगा तो क्या होगा? गुस्से का संस्कार इतना मजबूत हो जाएगा जो वो वृद्धि को पाएगा। मान लो कि उस गुस्से पर विजय प्राप्त करने के लिए हमने बाबा से शक्ति मांगी, बाबा ने शांति का वरदान मुझे दिया, लेकिन उसको मैंने महसूस नहीं किया। महसूस करना पड़ता है यूज करने के लिए, तो महसूस ही नहीं किया और उसको रख दिया तिजोरी के अंदर। यहाँ बाबा के घर में आई, मुझे बहुत शांति मिली, बहुत अच्छा लगा, जैसे बाबा ने मेरे अंदर शांति भर दी, इतना तो महसूस किया, लेकिन फिर उसका प्रयोग नहीं किया तो क्या होगा? कमजोरी का प्रयोग होगा, और कमजोरी का प्रयोग होगा तो वो विशेषता को समाप्त करेगा। लेकिन अगर हमको बाबा ने वरदान दिया है तो उस विशेषता का प्रयोग ज्यादा करें। जब विशेषता का प्रयोग अधिक करेंगे तो कमजोरी को प्रयोग होने का चांस नहीं मिलेगा, तो वो कमजोरी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। इसलिए बाबा कई बार कहते हैं कि बच्चे आप विशेषता का प्रयोग करने में बिजी हो जाओ। जितना बिजी हो जाएगा तो नेचुरली टाइम नहीं मिलेगा कमजोरी को प्रयोग होने का, और कुछ समय तक अगर वो कमजोरी ने प्रयोग में नहीं आई तो धीरे धीरे वो संस्कार समाप्त हो जाएगा। इसीलिए कल जो बाबा ने कहा कि विशेषता जो वरदान के रूप में मिली है उसको महसूस करो कि मुझे कौन सी विशेषता मिली है। जैसे मैं उदाहरण देती हूँ आपको, हमारी तीन दादियां थी, है ना, प्रकाशमणि दादी, जानकी दादी और गुलजार दादी। ये तीनों दादी की अपनी अपनी विशेषता थी। प्रकाशमणि दादी की विशेषता क्या थी? वो प्रेम स्वरूप थी। क्लास में भी आती थी, भाई बहनों को देखती थी, इतना खुश होकर के गले लगा देती थी ऐसे हर एक को, है ना, प्रेम स्वरूप, एकदम प्रेम की देवी थी। आती थी क्लास में, सबसे पहले पूछती थी आप सब ठीक हो, किसी को कोई तकलीफ तो नहीं है। आज ये महसूस होता है कि दादी जो पूछती थी ना, वो पूछने वाला कोई नहीं रहा, ये महसूस होता है। लेकिन दादी इतना प्यार से पूछती थी कि अगर नहीं ठीक होगा ना, कोई बीमार नहीं होगा ना, दादी ने पूछा ना, ठीक हो गया, ठीक हो जाता था। प्रेम की देवी थी। अच्छा, हमारी जानकी दादी ज्ञान की देवी थी। उसको लगता था इतने बाबा के बच्चे आए और मैं क्लास ना कर रहा हूं, ये कैसे होगा? ज्ञान के बाबा के अनमोल रतन मुझे देना ही है। वो ज्ञान बांटती, वो प्यार बांटती थी, वो ज्ञान बांटती थी। ये जो ब्लेसिंग कार्ड निकले है ना, ये जानकी दादी के कारण निकले हैं। क्योंकि जब डॉक्टर ने बिल्कुल मना कर दिया कि दादी आपको ठीक होना हो तो आपको बिल्कुल चुप रहना पड़ेगा, आपको बात नहीं करना है, क्लास नहीं कराना है, तो दादी को लगा अरे कोई मिलने आया और मैं उसको दो बार भी ना कह सकूं, बाबा को कोई वरदान ना दे सकूं, ऐसे कैसे हो सकता है? तो कहा अच्छा बाबा के वरदान के कार्ड बना दो। अच्छा मैं बोलूंगी नहीं, दे सकती हूँ ना, है ना, वहां से ये कार्ड निकले। देखो जो विशेषता है तो फिर उस विशेषता का प्रयोग करने के लिए अगर कोई मना नहीं करता है, डॉक्टर मना करता है, तो उसकी दूसरी विधि निकाल लेते हैं। लेकिन आज भी देखो वरदान कार्ड जब मिलता है एक्यूरेट होता है कि नहीं होता है? जो वरदान मिला लगता है बिल्कुल एक्यूरेट निकला मेरे लिए, बाबा का वही वरदान मेरे को मिला, है ना। तो इसीलिए दादी जानकी को हमेशा ही लगता था कि बाबा के इतने बच्चे आए और मैं उसको कुछ दू नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, कोई ना कोई ज्ञान के दो बोल मुझे जरूर देना ही है, चाहे वरदान के कार्ड के रूप में दू, है ना। इसीलिए देखो 104 साल की उम्र में भी वो देती थी हरेक को कुछ न सब कुछ, रोज क्लास में जरूर आना होता था, शाम के समय योग भी कराती थी और देती भी थी। तीन बार ओम शांति बोल करके उसका मतलब भी बता करके देती थी कि ओम शांति माना मैं कौन, मेरा कौन और मुझे क्या करना है, ये जैसे पक्का कराती थी, है ना। तो वो ज्ञान की देवी थी। और गुलजार दादी हमारी साइलेंस की देवी, दादी बस आकर खड़ी हो जाए, कुछ भी ना बोले, खाली दृष्टि दे तो भी भरपूर कर देती थी, साइलेंस की देवी। तीनों की अपनी अपनी विशेषता थी, कभी उनके अंदर ईर्ष्या नहीं आई। दादी जानकी को कभी ये नहीं लगा मैं प्रकाशमणि दादी के जैसे बन जाऊं या गुलजार दादी के जैसे बन जाऊं, कभी ईर्ष्या आई। वो अपने में खुश थी, उस विशेषता में खुश थी, और जितना उस विशेषता का प्रयोग वो वृद्धि को पाते पाते संपूर्ण बन गई, उसी से संपूर्ण बन गई। तो ऐसे हर एक को कोई ना कोई विशेषता जरूर मिली है। हमें अपनी विशेषता को पहचानना है और उस विशेषता के प्रयोग से उसकी वृद्धि करनी है। जितना उसकी वृद्धि करेगी तो कमजोरी के संस्कार क्या होंगे, समाप्त हो जाएंगे। इसीलिए कहा दृढ़ संकल्प से परिवर्तन। ये दृढ़ संकल्प करो, जो अपनी विशेषता है ना, उस विशेषता के प्रति प्रतिबद्धता अपने अंदर आ जाए, उसके प्रति दृढ़ संकल्प हम हो जाए, ताकि वो कमजोरी को हम सदा के लिए मिटा सके, तो विशेषता का प्रयोग करना है। और लास्ट की बात सुनाना चाहूंगी कि ये परिवर्तन करने के लिए भी कौन मुझे कह रहा है, कौन मुझे कह रहा है, कोई व्यक्ति नहीं कह रहा है, लेकिन साक्षात भगवान मुझे कह रहा है, जिसको पाने के लिए इतने जन्मों मैंने भक्ति की, आज वो मेरे सम्मुख आकर के मुझे परिवर्तन करने के लिए कह रहा है, कोई इंसान नहीं कह रहा है। जैसे दुनिया के अंदर भी किसी को किसी से बहुत प्यार है और वो कुछ भी बात कहे तो उसके लिए त्याग करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, प्यार है तो प्यार में त्याग करना भी सहज हो जाता है। एक माँ का बच्चे से प्यार है, मोह है, तो उसके लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाती है, कोई भी त्याग उसको त्याग नहीं लगता है, खुशी होती है। ठीक इसी तरह मुझे कहने वाला कौन, जो मेरे से इतना प्यार करता है, वो मुझे कह रहा है, तो उसके लिए हम इतना नहीं करेंगे क्या। जब ये बात स्मृति में आ जाए कि मुझे कहने वाला कौन है, कोई व्यक्ति नहीं है, साक्षात भगवान मुझे कह रहा है। जैसे ही ये रियलाइजेशन होगा तो उस रियलाइजेशन के आधार पर छोड़ना कोई बड़ी बात नहीं लगेगी, है ना। जानकी दादी हमेशा कहती थी क्या बड़ी बात है, क्या बड़ी बात है। तो इसीलिए ये महसूस करना कि कौन मुझे कह रहा है, स्वयं बाबा मुझे कह रहा है, भगवान मुझे कह रहा है, तो छोड़ना कोई बड़ी बात नहीं, तो परिवर्तन होना क्या होगा, आसान हो जाएगा। और जो दृढ़ संकल्प लिया उसमें सफलता सहज मिल जाएगी, क्योंकि बाबा मुझे कह रहा है, मुझे करना है। कई लोग कहते हैं मेरे में दृढ़ संकल्प है ही नहीं, ऐसा नहीं कि नहीं है, जब से बाबा के बच्चे बने जो बाबा ने नियम मर्यादाएं दी छोड़ा कि नहीं छोड़ा, हाँ प्याज लहसुन खाना छोड़ा कि नहीं छोड़ा, कि खाते हैं कोई अभी भी, खाते हैं नहीं खाते हैं ना, बाबा के बने उस दिन से छोड़ा दृढ़ संकल्प क्या नहीं खाना है, छोड़ दिया कि अभी भी मन होता है, नहीं होता है ना। अच्छा जो बाबा ने कहा बच्चे रोज क्लास में जाना है, चाहे टीवी पर भी सुनते हैं कि नहीं सुनते मुरली, यूट्यूब में भी सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं मुरली? सुनते ही हैं। कोई दिन मुरली मिस हो रही है? नहीं, बाबा ने हर प्रकार के साइंस के साधन उपलब्ध करा दिए। लॉकडाउन में भी हर कोई ने मुरली क्लास रोज किया कि नहीं? नहीं करने वाले भी करने लग गए कि नहीं करने लग गए, है ना? तो दृढ़ संकल्प है ना? देखो, पहले 7 दिन का कोर्स किया, उसके बाद से रोज आना चालू किया, तो सबसे पहले तो घर वालों ने बोलना चालू किया, रोज रोज क्या है। जितना उन्होंने बोला उतना जाना चालू किया। अच्छा, फिर जैसे खान पान छोड़ा, अशुद्ध खान पान छोड़ा, तो क्या कहा, ये कौन सा नया धर्म आया है ना? लेकिन उसका सामना किया कि नहीं किया? किया, तो दृढ़ संकल्प है ना आपके अंदर कि नहीं है? अच्छा, उसके बाद जैसे ही प्याज लहसुन जोड़ा, तो कहा ये क्या है, ये तो हेल्थ के लिए अच्छा है, ये क्यों छोड़ रहे हैं? कहने लगे कि नहीं, फिर भी खाया? नहीं खाते हैं, कुछ भी युक्ति अपना लेते हैं, लेकिन युक्ति अपना करके भी नहीं खाते हैं। करते हैं ना, पक्के हैं ना, अपने नियम मर्यादा धारणाओं में पक्के हैं कि नहीं? अच्छा, फिर जैसे ही अमृत वेला उठना शुरू कर दिया, तो फिर घर वालों ने कहा ये आधी रात को क्या कर रहे हैं? फिर भी एक एक नियम पालन किया कि नहीं किया? तो दृढ़ता है या नहीं है? है ना? छोड़ा तो नहीं ना? तो दृढ़ संकल्प भारी तो है ही आप। अब जो छोटी छोटी कमजोरी है उसको छोड़ने में कौन सी मुसीबत आ रही है बताओ? उसको क्यों पाल के रखा है? इतनी बड़ी बड़ी बातें आपने सहन भी किया, उसके लिए लड़ाई झगड़ा भी हो गया, कुछ भी हो गया, तो भी आपने किया कि नहीं किया? फिर और विजयी हुए कि नहीं हुए? विजयी भी हुए। तो इसीलिए ये छोटी छोटी कमजोरी फिर उसको पाल के क्यों बैठे हैं? वो तो हट से हो जानी चाहिए अभी, क्योंकि हमें बाप समान बनना है, संपूर्ण बनना है और संपन्न होना है। तो ये छोटी छोटी कमजोरी कहीं हमें फेल न कर दे, इसके लिए इसको भी अभी क्या करना है, खत्म कर देना है। ठीक है? अच्छा, ओम शांति।
भरे थी हमके हर दुख, आज हम मिटा